وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا, تو آگے سے ان کا جواب پتا کیا ہوتا ہے, بھائی آؤ قرآن جو کہتا ہے اس طرف آؤ, حدیث جو کہتی ہے اس طرف آؤ, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, یہ کام نہیں کرنا, یہ سنت کے مطابق نہیں ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا, تم کیوں کرتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں آگے سے, قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباؤنا, ہم تو وہی کریں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. دیکھیں نا مشرکین مکہ کے ساتھ تو یہ تھا ہی معاملہ, وہ کہتے تھے ہم نے تو اسی مذہب کے پر ہمارے باپ دادا تھے, آپ ہمیں اور کچھ سکھانے آ گئے, ہم نے تو نہیں چھوڑنا جس پہ ہمارے باپ دادا تھے اس سے ہم ہٹ جائیں. ابو طالب نے لاسٹ مومنٹ تک کیوں نہیں اسلام لائے تھے, انہوں نے کہتے تھے لوگ عورتیں کہیں گی کہ دیکھو مرتے وقت ڈر گیا تھا تو اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. یہ ایک بہت بڑی پیر کی بیڑی ہوتی ہے, ایک بہت بڑا انسان کو جو چیز روکتی ہے نا وہ یہ کہ ہمارے باپ دادا اس چیز کے اوپر, یہ صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے. اور آج بھی آپ کسی سے کہہ کے دیکھیں, کسی سے کہہ کے دیکھیں آپ ذرا آپ اس طرح شادی کریں, یا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ 40ویں اور یہ برسیاں اور یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں لوگ ہمارے تو ہمیشہ سے ہوتا رہا, ہمارے تو گھروں میں یہ ہوتا ہے, ہمارے تو سارے کرتے ہیں, ہماری تو امی بھی یہ کیا کرتی تھی, کنڈے بھی کرتی تھیں اور وہ یہ بھی کرتی تھی, اور آپ ہمیں کیا نئی باتیں بتانے آ رہے. اگر ان کو کہنا قرآن اور حدیث میں یہ لکھا ہے یا یہ چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, تو پھر ان کا جواب دیکھیں کیا ملتا ہے آپ کو, جواب اگر پوچھ کہہ کے دیکھیے گا, دے ڈونٹ کیئر قرآن میں ہے حدیث میں ہے کیا نہیں ہے, بس ہمارے تو بڑے یہ کرتے تھے. اور یہ سب سے بھونڈا ایکسکیوز ہے, سب سے بیکار ایکسکیوز یہ. اس لیے اگر دیکھیں دنیاوی معاملات میں ہم کبھی نہیں وہ کرتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. اب ہمارے باپ دادا کیسا پہنتے تھے, اتنے سمپل ان کی لائف تھیں, ان کے گھر کتنے سمپل تھے, ویسا تو ہمارے کچھ بھی نہیں ہے جو ہم کاپی کرتے ہیں. لیکن خاص طور پہ دین میں ضرور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے, دین میں ہمیں ان کی پیروی یاد آ جاتی. اب دیکھیں کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ آپ نا یہ آپ یہ کرتی ہیں گیارہویں, تو گیارہویں نہ کریں, یہ تو دیکھیں یہ تو سنت کا طریقہ ہی نہیں. ان کو کہیں گے نہیں نہیں میری تو امی بھی کھیر پکاتی تھی, میری دادی بھی کھیر پکاتی تھی, میری فلانا بھی کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, اولو کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, وہ ان کے پیچھے اندھا دھند چلتے ہی رہیں گے, چاہے ان کے باپ دادا کو کوئی عقل نہیں تھی اور وہ ہدایت پہ ہی نہیں تھے. اور واقعی اگر دیکھیں تو دین کے معاملے میں جو پچھلے ہیں, الا ماشاء اللہ کسی کسی کے خاندان ہوں گے جو کہ دینی کوئی خاندان سے ہوگا, لیکن زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں کہ ان کے باپ دادا کو کوئی دین کا ایسا نالج نہیں تھا, کوئی وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے اس طرح جیسے آج لوگوں کو اپرچونیٹی مل رہی ہے, نہیں انہوں نے اس طرح سے سیکھا تھا, لیکن کہتے ہیں نہیں ہم نے اندھا دھن فالو وہی کرنا, چاہے وہ غلط کر رہے تھے, نہیں وہ بھی تو ایسا کرتے تھے, تو کیا ہو گیا اگر ہم بھی کریں گے؟ آپ کا مطلب ہے وہ سارے غلط تھے, آپ یہ کہنا چاہتی ہیں, آپ یہ کہنا چاہتی ہیں وہ سارے جہنم میں چلے گئے؟ تو اسی طرح وہ مشرکین مکہ کرتے تھے کہ پھر وہ ہمارے باپ دادا کیا جہنم میں چلے گئے جو وہ یہ بت پرستیاں کرتے گئے. آج بھی پوچھتے ہیں کیا انہوں نے پھر غلط کی, یعنی اب آپ کہیں گے ہاں وہ غلط کرتے تھے تو پھر وہ آپ کا سر توڑیں گے کہ آپ نے ہمارے باپ دادا کو یہ کہنے کی کیسے ضرورت کرتی. اور ویسے ہم کہتے رہیں گے کہ امی آپ کو کیا پتا, وہ تو ان کو کیا پتا, آپ تو پرانے لوگ ہیں ہمیں جو زیادہ پتا, لیکن دین کے معاملے میں نہیں ہم وہ چھوڑتے چیزیں, وہی ہم اندھا دھند لکیر کے فقیر اس کے اوپر ہی چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. اب دیکھ لیں ہم سب لوگ جتنے بھی ہیں, اللہ ماشاءاللہ شاید ہی کوئی ہو جس کے پشتوں تک سے سب مسلمان آ رہے ہیں, زیادہ تر جو لوگ سب کانٹیننٹ کے ہیں, انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں, ان کے آباؤ اجداد پیچھے سے تو ہندو ہی تھے نا, غیر مسلم ہی تھے نا, اس کے بعد ہی کوئی مسلمان ہوا ہوگا, پہلا کوئی آدمی مسلمان ہوا ہوگا جس سے آگے پھر اسلام چلتا رہا. اگر وہ پہلا آدمی بھی کہتا کہ نہیں جی میں نے تو وہی کرنا جو میرے آباؤ اجداد کرتے رہے, تو ہمارے تک اسلام پہنچتا मैं तो कहती हूँ हम सबको दुआएं करनी चाहिए उस पहले इंसान के लिए जो इस्लाम लाया हो। पता नहीं कितनी उन्होंने कुर्बानी दी होगी, कितना उनके लिए मुश्किल होगा, तो आज हम कुर्बानी देने से बच गए। कितना उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, उसी वक्त में तो कोई ईमान लाया होगा ना। तो वो जो भी होगा अल्लाह ताला उनके लिए हमें सबको सदका जारिया बनाए। ये देखो कितनी बड़ी बात है। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर वो गलत करते रहते तो आज हम तक सही बात कहां से पहुंचती। इसलिए अगर कोई पता चल भी जाए कि हमारे बाप दादा कुछ गलत कर रहे थे तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका वबाल बढ़ेगा, उनके ऊपर मुसीबत बढ़ेगी, उसको बल्कि चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि वरना क्या होगा, जैसे काबिल ने कत्ल किया तो आगे जितने भी लोग कत्ल करते रहेंगे उसका सारा का किसको जाएगा, वो काबिल के ऊपर, उसका हर कत्ल का एक हिस्सा गुनाह का काबिल पे भी होगा। इस तरह अगर किसी के अबाउजदाद कुछ गलत काम करते रहे हैं तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, वहां पे स्टॉप कर दे ताकि ये तो गुनाह का सिलसिला तो ना चलता रहे। लेकिन हम इसमें प्राउड होते हैं कि नहीं देखो हम उनकी ट्रेडिशन लेके आगे चल रहे हैं। इस्लाम या दीन ट्रेडिशंस के ऊपर नहीं चलता। इससे हमें पता चलता है अंधाधुंध हमने किसी को फॉलो नहीं करना, अंधे होके ब्लाइंडली, चाहे वो बाप दादा है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई इमाम है, चाहे कोई भी है, प्रूफ पूछो यार। ये कोई प्रूफ नहीं है कि नहीं हमारे बड़े करते थे। ये पूछो ये कहां से हमें इसकी दलील मिलती है। अगर कुरान और हदीस से कोई दलील मिलती है तो फिर हम ये करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिंपल एज दैट। अगर आप अपना मयार कुरान और हदीस रख लेंगे तो कोई मसला ही नहीं। और अगर मयार ये है कि बाप दादा करते थे तो फिर बाप दादा की गलतियां तो चलती रहेंगी आगे। और वाकई बाप दादा में से काम ही है, जो आप अपनी पिछली जनरेशन को देख लें उनके पास दीन का कितना इल्म था। इल्ला माशाल्लाह किसी के होंगे भी, लेकिन ज्यादातर के क्या दीन का इल्म है। अगर वो कहेंगे कि तुम लोगों ने हिजाब नहीं ले, अगर वो कहेंगे कि तुम लोग ये क्यों ये सूद और इसकी इतनी में पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और क्या तुमने ये शुरू किया हुआ कि ये हराम है और ये नहीं है और ये क्या तुमने, तो क्या उनके पैरवी शुरू कर देंगे। नहीं, सिर्फ पैरवी उसकी करनी है जो कुरान और हदीस से बात करे, जो खुद हिदायत पे। यहतदून का मतलब क्या है, यानी कि वो खुद हिदायत पा चुका हो, वो खुद दीन को फॉलो कर रहा हो, उसको तो आप फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं मतलब है कि अबाउ अजदाद को बिल्कुल ही आप जीरो कर दें और कहें कि नहीं जी उन जो वो कहते हैं उससे अलग करना, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि आप देखें पिछले पारे के एंड में हमने देखा था याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को उन्होंने जब बुला के पूछा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने क्या कहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आबा की, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम ने जिस खुदा की पूजा की थी हम भी उसी की इबादत करेंगे। तो वो तो अपने आबा के खुदा की इबादत कर रहे थे ना। तो आबा अगर हिदायत पे हैं तो कोई हर्ज नहीं, फिर तो आप जाहिर अल्लाह की बात को ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आबा खुद हिदायत से हटे पड़े, आपको आज हिदायत मिल गई है और आपको पता चल गया कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन फिर भी आप उसी को फॉलो किए जाएं तो भटकेंगे ना। फिर देखिए आबाओ अजदाद का मतलब ये नहीं होता कि वो अकले कुल हैं, उनके पास वो पायटी की इंतहा हो गए क्योंकि वो आबाओ अजदाद बन गए। वो भी इंसान ही है हमारी तरह, उनसे भी गलती हो सकती थी। आज अगर एक कादियानी है तो उसका बच्चा कादियानी है, एक ईसाई है तो उसका बच्चा ईसाई है, एक यहूदी है उसका बच्चा यहूदी, क्योंकि अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करनी, खुद नहीं सोचना कि ये क्या सही कह रहे हैं या नहीं। तो जरूरी है कि इंसान देखे कि मेरे आबाओ अजदाद जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं, फिर मैं उसको फॉलो करूं। मसलुल्लदीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, कुफर की बात किसकी कही जा रही है, जो पिछली आयत में आ रहे हैं, जो ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे हैं आबा की, और जब आबा को हिदायत खुद मिली ही नहीं थी और ये उनके रास्ते पे ही चल रहे हैं, तो उनकी मिसाल ऐसे काफरों की मिसाल कैसी है। का मसलुल्लजी यनइकु, ये एक ना अल्लाह तआला ने तमसील दी है, यानी एक एक मिसाल के साथ बताया कि इन ये किस तरह से है। जैसे अल्लदी यनइकु, जो पुकारता है, बिमा ला यस्माउ, उसको जो नहीं सुनता, इल्ला दुआ व निदा, वो उसको पुकार रहा है जो सिवाय दुआ और निदा के। दुआ कहते हैं द्वार, निदा दोनों पुकार और आवाज, फर्क दोनों में क्या है। कहा जाता है कि दुआ जो है वो बामानी है, और निदा जैसे ओ ओ जैसे हम ऐसे कहेंगे, अब ओ का कुछ माना नहीं है ना। और ये भी कहा जाता है कि दुआ और निदा में ये फर्क है, दुआ करीब से किसी को बुलाना, और निदा जो है वो दूर से किसी को बुला रहे हैं आप, तो वो उसको निदा कहते हैं। बाहर क्या है, दोनों आवाज ही हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क है दोनों में, ठीक है। ये इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप एक चरवाहे को सोचिए, मैं आपको फिर उससे समझाती हूँ या आपको उससे समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, कि एक चरवाहा है, ठीक है। अब वो बकरियों को बुला रहा है, अब वो अपनी बकरियों को बुला रहा है बुला रहा है उनको, अगर वो बुला के आवाज में क्या कह रहा है, इधर आओ तुम्हें जिबा करूं, इधर आओ मैं तुम्हें हलाल करने वाला हूं। बकरियों को क्या समझ आ रही, कुछ समझ आ रही उनको? कुछ समझ नहीं, उनको पता है कि ये हमें बुला रहा है, आवाज है एक लेकिन अंदर उसके कंटेंट क्या है वो नहीं समझ आ रही। या उनको कह रहा आओ मैं तुम्हें चारा डालूं, आओ चलो घर चलना, कितनी हिकमत की बातें कर ले, या हाँ ओए कर करके उनको करे, दोनों में से कुछ भी कर लेगा ना, बामानी कोई बात कर दे, बड़ी हिकमत वाली बात कर दे, या फिर उनको पुकार रहा है वैसे ही उनको हांक लगा रहा है, उन बकरियों के लिए वो क्या है, सिर्फ एक आवाज है बस, उससे आगे उनको कुछ नहीं समझ। ये हमें हलाल करने लगा है, या हमें ये कुछ चारा डालने लगा है, ये हमें कोई घर ले जाने लगा है, या कहीं से फेंकने लगा है, या हमारे साथ क्या करेगा, कुछ नहीं समझ में। इसी तरह इन लोगों की मिसाल है, यानी आप उनके सामने इतना बताओ, कुरान समझा रहे हो, हदीस बता रहे हो, कुछ कर, उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगती, वो उनको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या क्या रहा है, ये हमारे लिए कितनी फलाकी बात कर रहा है, या कि उनके लिए बस आवाज ही है। एंड ऑफ द डे क्या वो वहीं के वहीं खड़े होते। कभी आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ा, जो जितना मर्जी उनको समझा ले, कितनी आप दलाइल दे ले, उनकी नहीं समझ में आती बात, वो वहीं के वहीं होते। नहीं, हमने तो बस वही करना है जो हमारे बाप दादा करते थे, वो कोई गलत तो नहीं करते थे। अल्लाह तआला ने फरमाया सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला याकिलून, वो क्या है, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, तो वो अकल नहीं रखते। बहरे सबसे पहले कहा जाता है, क्योंकि जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा असर करती है ना, पढ़ना भी इतना असर नहीं करता जितना सुनना असर करता है। ये जो आपके कानों के थ्रू जाता है ना, आप वो ही चीज आप पढ़ के देख लें। अच्छा आप कभी ऐसे करिएगा, एक लेक्चर सुन के देखें और पढ़ के देखें, आप देखेंगे जो आपने सुना है ना वो ज्यादा असर करता है। तो वो बहरे हैं, यानी इनको आप बताते जा रहे हैं वो कुछ नहीं सुन रहा। बहरे यानी कि वो वैसे डेफ हैं, डेफ नहीं है मगर ये बातें नहीं उनको सुनती बस। और वो क्या है, गूंगे हैं, यानी हक बात बोलते नहीं, वैसे हर बात बोलेंगे लेकिन जो सही बात है वो नहीं बोलते। और अंधे हैं, वैसे उनको हर चीज नजर आती है लेकिन आपको मैंने क्या बताया था कि दो चीजें हैं, दो आयात हैं जो निशानियां हैं अल्लाह की, जिनसे आप अल्लाह को पहचानते, एक कुरान में आयात और एक कायनात में आयात। तो चलो अगर आप किसी से सुन के नहीं समझते, कोई आप कोई कोई आपको बता रहा है आपको नहीं वो सुननी, तो कम से कम खुद देख के ही इंसान को समझ आ जाती है, वो देखते भी नहीं है, वो उसमें भी अंधे हैं। आप देखे ना, एक बंदा है अगर उसको हेल्प चाहिए हो तो वो चीख के बोलता है कि मुझे हेल्प करो हेल्प करो, अगर वो वैसे ही चीख नहीं सकता तो कुछ कुछ देख के अपना रास्ता मुतय्यन कर दे, नहीं तो उसको कोई मतलब कोई उसकी कोई मदद करने के लिए आता है वो कुछ बोलता है तो उसको वो सुनाई दे देता है तो चलो उसकी तरफ चला जाए। दो तीन तरीके हैं ना इंसान के मदद हासिल करने के, या तो अपना खुद रास्ता देख के चला जाए, नहीं देख सकता कुछ कोई किसी की सुन ले और रास्ता पा ले, नहीं वो भी पाता तो को किसी को पुकार ही ले कि आओ आओ मेरी हेल्प करो। जब तीनों ही चीजें नहीं है तो वो तो लॉस्ट है ना। फहम ला याकिलून, वो अकल नहीं रखते, यानी वो सोचना ही नहीं चाहते। इसलिए कि अगर अकल इस्तेमाल करें ना इंसान को, अल्लाह ताला ने अकल ऐसी चीज दी है, बहुत जबरदस्त चीज है जो इंसान के पास है, जानवरों के पास अकल नहीं है, इसलिए वो जानवर है और हम इंसान है, यही तो फर्क है। और अगर इंसान ने भी अकल इस्तेमाल करनी छोड़ दी तो फिर क्या है, वो जानवर ही है ना। बल्कि फरमाया कुरान पाक में आता है बल हम अदल, बल्कि ये उनसे भी ज्यादा है,
उलाइका कल अनआम, ये तो चौपाइयों की तरह है, बल हम अदल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। क्यों उनसे ज्यादा क्यों गए गुजरे, उनके बराबर क्यों नहीं है? इसलिए कि चौपाए भी देखो ये बेचारी बकरी है या कुछ है, और उसको नहीं समझ आ रही चरवाहे की बात, लेकिन वो मानती तो है ना, चल पड़ती है उधर को जिधर को वो हाँ करा। इंसान तेरा तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है, पर नहीं समझ आ रही कुछ नहीं, तो फिर भी इंसान सोच लेता मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन मेरी अल्लाह की बात है, इसमें जरूर कोई भलाई होगी, मैं तो करूंगी तो यही, चाहे मुझे नहीं भी समझ आ रही। तो तुमसे तो जानवर ही अच्छा है, अगर नहीं समझ आ रही कर तो रहा है ना वो जो काम उसको कहा जा रहा है करने, तुम तो करते भी नहीं। बल हम अदल, उससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। तो जो अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, सुनना, ये देखे, ये सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जो जहन्नुम के अंदर होंगे, जब उनसे पूछा जाएगा तुम जहन्नुम में क्यों, तो कहते क्या, वकालू लव कुन्ना नस्मा हुआ नाकिलू मा कुन्ना फी अस्हाबे साईर, वो कहेंगे काश हम दुनिया में सुन लेते और यहाँ कोई अकल ही इस्तेमाल कर लेते, किसी किसी की बात अगर नहीं सुनी चलो अपनी अकल इस्तेमाल करके देख लो, खुद की अकल आपको गाइड कर देगी ये एक खुदा है, तो हम कुछ तो करते, लेकिन ना हमने सुना तो ना हमने अपनी अकल इस्तेमाल की, तो इसलिए आज हम यहाँ पे, अगर हम कर लेते तो यहाँ ना होते। इसलिए हम लोगों को कहते हैं सुन लो एटलीस्ट, सुन लो एटलीस्ट, कहते हैं हमने सुनना भी नहीं, कान ही अपने बंद कर लेते हैं। फिर ऐसों का आप क्या कर सकते हैं जो सुनना भी ना चाहे। आज वो वक्त आ गया है कि अल्लाह की बात को सुनना भी गवारा नहीं है, तो फिर कहाँ से हिदायत मिलेगी? कहते हैं हम पहले से हिदायत याफ्ता हैं, वही शैतान ने ऐसा चाबी दे दी है ना, तो तुम्हें हिदायत की क्या जरूरत है, तुमने कोई कुरान से हिदायत लेनी? तुम वो इतने ही बेवकूफ हो कि तुम कुरान से हिदायत लोगे, तुम्हें तो पहले ही हिदायत मिली हुई है, भला बचपन से तुमने नहीं कुछ पढ़ा, तुम्हारे घर वालों ने नहीं कुछ बताया, उन्होंने सब कुछ बताया हुआ तुम्हें, मुसलमान घराने में पैदा हुए हो ना, तो बस ठीक है तुम्हें सब आता है, अब ये तुम्हें क्या सिखाएंगे? इंसान बड़ा मुतमईन होके बैठ जाता है, हाँ, मैंने क्या सीखना है कुरान से, कोई नई बात मुझे सिखाएंगे, सब आता है हमें। कितनी जबरदस्त थपकी है जो शैतान देता है, तो खुद ही अपने आप को बहरा बना लिया, गूंगा बना लिया, अंधा बना लिया, तो फिर कहाँ से हिदायत पाएंगे? या अय्युह लदीना आमनू, फिर आप ईमान वालों से कहा जा रहा है, देखें पहले किसको कहा गया, पूरी इंसानियत को, अब किसको कहा जा रहा है, ईमान वालों को, कुलू मिन तय्यिबात, खाओ पाकीजा चीजों में से। अब क्यों नहीं कहा हलाल, इसलिए कि ईमान वाला खाएगा ही हलाल, उसको सिर्फ तय्यिब का कहा गया, तुमने तय्यिब भी देखना, मा रज़क़नाकुम, जो हमने रिस्क दिया तुमको, यानी जो भी तुम्हारे पास रिस्क है ना, ये याद रखना, क्योंकि वो अल्लाह को मानता है ना, ये ना भूलना कि रजक ना हमने रिस्क दिया तुमको, ये नहीं कि मैंने अपनी कमाई की, मैंने मेहनत की, मैंने दिन रात लगाई है, तो ये फिर कारोबार मेरा इतना बड़ा है, मैंने इतनी जॉब में मेहनत की है ना, तब इतने पैसे मिले, नहीं, रजक ना कुम, हमने रिस्क दिया तुमको, इसमें से तुम खाओ। आपको पता है कुरान पाक में ये जो आपने अन्नास का भी पढ़ लिया कि अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को ये फरमाया कि तुम खाओ हलाल और तय्यब, ईमान वालों को भी फरमाया कि तुम तय्यबात में से खाओ, और पैगंबरों को भी फरमाया या अय्युह रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वामलु सालिहात, ए रसूलो खाओ तय्यबात में से और साले अमल करो। तो रसूलों को अलग हुक्म है, ईमान वालों को अलग हुक्म है, पूरी इंसानों को भी हुक्म है, तो इसलिए ये हुक्म सबके लिए सेम है, ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। और उसके बाद क्या करो, वशकुरू लिल्ला, शुक्र अदा करो अल्लाह का, क्योंकि सार इंसानों को क्यों नहीं सारों को कहा गया शुक्र, क्योंकि इंसान जो है ना खाएंगे तो अल्लाह का ही, वो भी अल्लाह का ही खाएंगे, वो शुक्र नहीं अदा करेंगे, सारे नहीं करेंगे, तो ईमान वालों से कहा, ईमान वालों तुम उनसे डिफरेंट हो, तुमने शुक्र अदा करना है अल्लाह का, इनकुन तुम या हो ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो, और आबद का मतलब आपको एक और क्या बताया था, गुलामी, अगर तुम अल्लाह के गुलाम हो ना सिर्फ, तो तुम्हें फिर समझ होगी कि मैंने क्या खाना है और मैंने खा के क्या करना है, मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए खाने के बाद, शुक्र, एक मोमिन से मतलूब क्या है, शुक्र, शुक्र क्या है? मैंने बहुत दफा आपको शुक्र का बताया था, मैंने आपको बताया था शुक्र दिल से भी एतराफ करना कि अल्लाह ने दिया है, ये मान लो कि ये अल्लाह ने दिया है, मेरी अपनी नहीं, मैंने इतनी अच्छी कोई कुकिंग नहीं की कि इतना जबरदस्त खाना बन गया, अल्लाह ने करा दिया, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। जुबान से भी यही अदा करो कि अल्लाह ताला का ही करम, और आपके बॉडी पार्ट्स भी उसके मुताबिक शुक्राने में अल्लाह की फरमाबरदारी करें। तो बेसिकली शुक्र नाम है, शुक्र को अगर दूसरा नाम दिया जाए ना, तो शुक्र नाम है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का। हम फरमाबरदारी करके दिखाते हैं शुक्राने के तौर पर, अल्लाह हमने रियलाइज किया है कि तूने हमें ये सब कुछ दिया है, इसलिए हम तेरी ही मान रहे हैं, समझ आई? और अगर इंसान खाए किसी का और फिर गुण गाए किसी और के और माथे टेके किसी और के सामने और तरीकों पे चले किसी और के और हलाल और हराम पूछे किसी और से, तो मुझे बताएं ये क्या शुक्रगुजारी है? आपका बच्चा आपको कहे कि मैं जी आपका बड़ा थैंकफुल हूं आपने में, और उसके बाद क्या करें, जो आप कहती हूं उसे उलट करता है, तो ये क्या थैंकफुलनेस है? छोटी सी मिसाल से देख लें, यानी हम कहें ना नहीं मैं तो बड़ी शुक्रगुजार हूं अल्लाह की, लेकिन अल्लाह का कोई हुक्म आ जाता आप मानते ही नहीं, ये कौन सी शुक्रगुजारी है भाई? ये शुक्रगुजारी तो नहीं, तो नाशुक्री है। शुक्रगुजारी है कि इंसान फिर झुक जाए, जो अपना मोहसिन है उसके आगे सर ना उठाए। आप समझते हैं कि अल्लाह हमारा मोहसिन है, उसने हमारे पर एहसान किया है ये जिंदगी दे के, ये इतनी नेमतें हमें अता करके जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो शुक्र पता ही तब चलेगा कि जब आप फरमा बरदारी करेंगे अल्लाह की, समझ आई? ये शुक्र गुजारियां नहीं है जो मुंह से बोले जाए, हाँ नहीं नहीं हम शुक्र करते हैं, बस शुक्र है और उसके बाद नाफरमानियों में भी आगे निकले, ये नहीं शुक्र है। हमारी शुक्र गुजारी का हाल देखें कि हम जितना हमें अच्छा अल्लाह ताला खिलाता है ना, उतनी हमारी नमाज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, उतना ही हम शुक्र ज्यादा करें। लेकिन आप देखेंगे कि जिस दिन हम कोई दावत खा के आए, यहाँ कोई हम शादी पे चले जाएं, उसके बाद हमारी नमाज कैसी होती है? बेस्ट होती है कि जो पहली थी उससे भी गई गुजरी, जमाइयां आ रही हैं, सर घूम रहा है, और फजर तो पता नहीं फिर पढ़ी जाती भी है कि नहीं, तहज्जुद तो वैसे ही जो पढ़ते भी हैं वो भी ना पढ़ी गई। तो हम तो जितनी ज्यादा हमें नेमत मिलती है तो हम उतनी नाशुक्री करते हैं, हम लेट आए थे अब क्या फजर पे तो उठ नहीं सकते, तो शुक्र गुजारी ये नहीं है। अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं तो फरमाया कि अब नेमतें देने वाले को भी याद रखना, और ये भी ना शुक्रिया है कि इंसान खाए किसी का, वो उसकी नेमतों को इस्तेमाल भी करे, इंजॉय भी करे, फिर उसके बाद उसका ये भी ना कभी करे कि उसका उनका जिक्र करे, बल्कि हमेशा रोता रहे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें तो कुछ बचता ही नहीं है, हम तो बस लूटे गए मारे गए, हाय 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 हाय, बस हर वक्त हाय हाय करता रहे, ये भी नाशुक्री है। अल्लाह ताला ये नहीं देखना चाहता। तुम खाते हो पीते हो तो आप शुक्र अदा करो कि शुक्र है अल्लाह ने बहुत दिया है, हमारी औकात से बढ़ के दिया है। आप घर में एक रोटी भी खाते हैं ना, तब भी शुक्र इस तरह से अदा करें, ये नहीं कि हाय भाई महंगाई बहुत हो गई, हाय ये नहीं, हाय नहीं वो, हाय ये, हाय हाय तो सही नहीं है, हाय हाय का मतलब ये है कि हमें नहीं कुछ मिला, आप अल्लाह की शिकायत कर रहे हैं। और इंसानों को इतना कुछ मिलने के बावजूद उनका ये हाल होता है कि जो नहीं मिली होती ना चीज उसी का रोना रोते रहते हैं। अब आप देख लें हमारे यहाँ अक्सर लोग इतना रोना रोते हैं, बस नहीं कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं हमारे पास कुछ नहीं, फिर उसके बाद उनकी शादियां देख लें, फिर उनके पार्टीज में उनके ड्रेसअप होना देख लें, फिर उनके और कई चीजें देख लें, तो आप कहते हैं कि ये किस किस्म की फिर नाशुक्रिया, हर वक्त रोते भी रहना और उसके बाद आप देंगे हर तरह की चीजें भी आपके पास हैं, तो ये नाशुक्री के कलिमात नहीं बोलने चाहिए, हमेशा शुक्र गुजार हैं। अब कई लोग कहते हैं ये हमारे गरीब खाने पे आप आए, भाई गरीब खाना क्या, जब देखे हो जाएगा तो अच्छा भला गा रहे, नहीं वो कहते हैं ये हमारी आजी है, तो ये आजी के अल्फाज नहीं नाशुक्री के अल्फाज है, गरीब खाना नहीं, शुक्र है अल्लाह ने हमें दिया, ये गरीब खाने हैं हमारे, तो ये इस किस्म की आर्टिफिशियल आजी की कोई जरूरत नहीं है, ये भी एक बनावट है सिर्फ। इन कुन तुम इया हुताबुन, अगर तुम सिर्फ उसकी इबादत करते हो तो तुम ये काम करो, इसका मतलब ये भी इबादत है कि आप तय्यिबात में से खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें उसके बाद खाके। अल्लाह ने खाने से मना नहीं किया, मगर ये बात अल्लाह को अच्छी नहीं लगती जब इंसान खा के फिर ना शुक्रिया करता, फिर कहता है हाय इतना खा लिया, हाय इतना। ओ भाई आपने खाया भी तो अपने आप पे जुल्म किया जब ज्यादा खा लिया, फिर उसके बाद भी हाय हाय करते रहना। इन्नमा हर्रम अलैकुम अल-मैतता वद्दम वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अब किन चीजों को अल्लाह ताला ने हराम कहा है उनकी लिस्ट बता दी। याद रखिएगा हलाल बहुत ज्यादा है और हराम थोड़ा है। अल्लाह ने हलाल बहुत सारी चीजें करी हैं, हराम की चीजें अल्लाह ने कुरान में बता दी या हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी। अब होना क्या चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जैसे आदम अलैहि सलाम के साथ हुआ था कि पूरी जन्नत हलाल थी, सिर्फ एक दरख्त के पास नहीं जाना था और शैतान उनको देखे उसी के पास लेकर गया। तो याद रखिए ये दुनिया में भी ऐसा ही होता है, हलाल इतनी चीजें हैं शैतान उनकी तरफ नहीं ले जाता। कितने ड्रिंक्स हैं आप बताएं हलाल, दूध ले लें, चाय, कॉफियां, आपकी जूसेस, आपके जितने मर्जी आप बना लें, लेकिन शैतान कहाँ वो गले सड़े जो चीजों की शराब बनती है उसकी तरफ लेके जाता है। तो देखे ना अब कितने जानवर हैं अल्लाह ताला ने हलाल किए, उन सारों को छुड़ा के वो खिंजीर के तरफ लेकर जाता है लोगों को। फिर इतनी अवेलेबिलिटी है जिंदा जानवरों की कि आप उनको जिबा करके खा सकते हैं, लेकिन मुर्दार की तरफ लेके जाता है। तो पता चलता है ना कि इसके पीछे शैतान है, कि जो अल्लाह ने कहा ना उसे उलट कराता है। तो आप देखें यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें पहला क्या है, मईतता, मुर्दार। मुर्दार कौन सा जानवर होता है, वो सब जानवर मुर्दार में है जो जिबा नहीं किए जाएंगे, यानी हलाल है लेकिन जिबा नहीं किए गए, वो तो मुर्दार ही हुए ना, जिबा नहीं किए गए। और वो भी मुर्दार में आ जाता है जिसके ऊपर अल्लाह का नाम ना लिया गया, यानी बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर ना कहा गया, वो भी मुर्दार ही हो गया। और तीसरी चीज ये कि अगर किसी मुशरिक ने उसको चाहे जिबा ही किया है लेकिन फिर भी वो हम नहीं खा सकते, वो भी हलाल नहीं है, यानी सिर्फ मुसलमान का या अहले किताब का, मुसलमान का या अहले किताब का जबीहा खा सकते, ठीक है। तो उसने जिबा किया होगा तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर किसी मुशरिक ने किया होगा, एथीस्ट ने किया होगा, इन्होंने किया होगा तो तब नहीं। हाँ दो मुर्दार ऐसे हैं जो हम खा सकते हैं, एक है मछली या समंदर का जो भी शिकार, समंदर में रहने वाले जो जानवर हैं, और एक है टिड्डी जिसको लोकस्ट कहते हैं। और टिड्डी वैसे आपको शायद, क्योंकि वही बात है ना तय्यब वाली बात आ गई कि हमारा क्या मिलान है, हम क्या चीजें खाते हैं, आपको पता है ये टिड्डी वगैरह ये अफ्रीका में वो सीखों पे डाल डाल के ना तो कबाब की तरह उसको रोस्ट करके तो वो खाते हैं। अब वहां पे इतने इतने मिल जाते हैं, जाहिर है डेजर्ट्स वगैरह में या इनमें कितनी मुश्किल होती खाने पीने की, हम अपने तरह से रख के ना सोचे, तो अल्लाह ने ये हलाल किया उनके लिए, वो इतनी सारी जमा कर लेते हैं फिर उनको खा लेते हैं उसके ऊपर भून के। वह दमा और खून कौन सा, जो बहता हुआ खून है। ये बहता हुआ खून यानी जैसे आज भी कई जगहों पर वो जानवरों की, उनको पता होता है कि किस जगह पे इसके यानी छुरा लगाना है, वो वहां से लगाते हैं, उनकी खास उसकी कोई एक वेन होती है उसको काटते हैं, वहां से खून बहता है, तो उस खून को जमा करके वो गर्म खून पीते हैं, कहते हैं इसके अंदर बड़ी ताकत है। आप साइंस बता रही है कि इनके अंदर कितने तरह के जरासीम होते हैं, लेकिन वो उसको पीते हैं, लेकिन हमारे लिए ये हराम है, ठीक है। हाँ जो हम अपने घरों में गोश्त लेकर आते हैं, जो जिबा किया हुआ जानवर है उसके ऊपर जो खून लगा रह जाता है वो अब हराम नहीं है, वो बहता हुआ खून नहीं है। जैसे हम कभी गोश्त को धो रहे होते हैं उसमें से भी खून निकलता है तो वो हम धो देते हैं, तो वो नहीं है हराम। वो जो बहता हुआ खून यानी जिस वक्त आप जिबा करते हैं जानवर को उस वक्त भी उससे खून बह रहा होता है, वो हराम है, वो नहीं आप कर सकते जिस वक्त उसकी गर्दन काटते हैं। अच्छा फिर अगर पूरी गर्दन भी अलग कर देंगे तो वो भी मईता हो जाएगा, ठीक है। वो भी मईता हो जाएगा कि वो अब इसका खून नहीं बहा, खून बहना जरूरी है। तो एक तो खून बहना जरूरी है जिबा करने के लिए, और एक अल्लाह का नाम लेना जरूरी है। एक जो इसको जिबा करने वाला आदमी है वो मुसलमान हो या अहले किताब, ये दो तीन चीजें हमें जहन में। जो मुसलमान मुल्क है वहां पे तो ज़ाहिर मुसलमान ही होते हैं, लेकिन जो दूसरे मुल्क है वहां पे ये चीज देखने की जरूरत होती है। और इसमें खून में दो चीजें जो है जो जायज है, खून एक कलेजी, क्योंकि कलेजी में भी खून ही सारा होता है, और एक तिल्ली स्प्लीन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो वो जायज है खाना। अदरवाइज बाकी खून उसका नाजायज है। और देखिए आज पता चलता है हमें साइंस से भी कि इसमें कितना फायदा है, वो जो जानवर का खून गाच करके निकलता है जब उसको जिबा किया जाता है, तो उसमें कितना फायदा है कि उसका जो फासिद खून है वो सारा निकल जाता है। और अगर उसकी पूरी की पूरी गर्दन काट दी जाए तो उसकी जो राबता बॉडी का ब्रेन के साथ है ना, वो कट जाता है, और जहां का जहां खून था वहीं जम जाता है। लेकिन जिस वक्त हमारा जो जिबा करने का तरीका है उस तरीके से काटा जाए तो ब्रेन के साथ कनेक्शन रहता है, फिर खून गश करता है ऊपर बॉडी का पूरा खून, तो आप देखते हैं कि फिर वो खून निकल जाता है। वलहमल खिंजीर, और खिंजीर के गोश को आज कुछ लोग बेचारे क्या उनको कहें कि वो कहते हैं, अब वो खिंजीर उस जमाने के तो गंदे खिंजीर थे, आज जो खिंजीर है ना ये बड़ा साफ सुथरा है। तो साफ सुथरा है या नहीं साफ सुथरा, अल्लाह ताला ने जब जिस चीज का कुरान पाक में कह दिया कि ये नहीं खाना, उसके बाद इसका क्या क्वेश्चन रह जाता है। तो खिंजीर के गोश्त का मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें उसकी इस्तेमाल कर लो, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन गोश्त मेन चीज होती है ना, तो गोश्त भी आ गया इसमें, हड्डी भी आ गई इसमें, उसकी चर्बी भी आ गई इसमें, कोई भी चीज इसकी जेलेटन भी आ गई, तो सब चीजें हैं। यानी खिंजीर की चर्बी से वो ऑयल बना लेते हैं, उसके अंदर कोई चीज फ्राई कर रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। फिर वमा हिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और ये जो पुकारा गया गैर अल्लाह के वास्ते से, यानी गैर अल्लाह के नाम के ऊपर जो जिबा किया गया। पहले वक्तों के अंदर तो मुशरिकीन क्या करते थे कि वो ये अपने बुतों के नाम पे जानवर को जिबा करते थे, और बुलंद आवाज से उसका नाम पुकारते थे जो भी उनका बुत होते थे। तो ऐसा जानवर तो हराम है ही, क्योंकि सिर्फ जानवर अल्लाह के नाम के ऊपर कुर्बान किया जा सकता है। अगर अल्लाह के नाम के अलावा किसी के नाम पे भी कुर्बान किया जाए तो वो भी हराम में आ जाता है। इसी तरह बाज दफा ठीक है अल्लाह का नाम लिया जाता है, लेकिन खुशनूदी किसी और की होती है कि किसी और, मिसाल के तौर पे बाज लोग यहां से बैठे हुए वो भेजते हैं जी फलां मिजार पे इतने बकरे जिबा कराते हैं, वो वहीं पे क्यों करा रहे हैं? नहीं अच्छा उनसे पूछें तो वो कहते हैं नहीं जी हम उनको सवाब पहुंचाने के लिए। सवाब पहुंचाना तो कोई भी उनको सवाब, तो यहाँ पे भी अगर आप जिबा कर लेंगे और आपकी नीयत होगी किसी को सवाब पहुंचते तो वो पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पे क्यों कराते हैं? उनकी खुशनुदी की खातिर, ये हमसे राजी हो, हमारा ये काम हो जाए जो फंसा हुआ है, हमारा जो कोई मसला है वो हमारी को मुश्किल आसान हो जाए। या बाज लोगों को ये होता है जैसे वो चढ़ावे चढ़ाते मिजारों पे जाके, ये इन्होंने, इन बाबा ने, इन फ्रा ने, इन साई ने, इन फलाने, इन्होंने हमें ये बच्चा दिया है, तो अब हम शुक्राने के तौर पे चादरें चढ़ाने आए, या शुक्राने के तौर पे हम ये बकरे जिबा करने आए यहाँ पे, तो वो के इन्होंने हमें दिया है। तो ये भी जानवर क्या है? जो भी किसी के लिए जिबा किया जाए वो जायज नहीं है। किसी के नाम के ऊपर देखिए, आप अपने माँ बाप के नाम की तरफ से भी कर सकते हैं कि आप अपने माँ बाप के लिए उनको सवाब मिले, लेकिन आप ये नहीं कह रहे होते कि अच्छा मेरे माँ बाप को ये सवाब मिले तो उनकी खुशनूदी होगी और फिर मेरे काम आसान हो जाएंगे, इस तरह का आपका नहीं होता। ऐसे होता है ना कि अगर माँ बाप की तरफ से कर रहे हैं कि उनकी उनको सवाब मिलता है तो आपके जहन में सवाब होता है, लेकिन किसी और बुजुर्ग के लिए ये नहीं होता कि उनको सवाब हो। असल बात अंदर से मसला क्या होता है, अल्लाह तो दिलों की नीयतें के हाल जानता है ना, अंदर क्या बात होती है कि ये मेरा काम फंसा हुआ है ये किसी तरह हो जाए। जो उन बाबा जी के नाम की नियाज, उन बाबा जी के नाम के बकरे, और तो ये मामा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये नाजायज हो जाता है। और देखें आप जब कहते हैं ना इन्ना सलाती व नुसुकी, नुसुक क्या है? कुर्बानी, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए। यहाँ पे कभी किसी बाबे की, कभी किसी पीर की, कभी किसी फकीर की, कभी किसी फलाने की, उनके नामों की कुर्बानियां हो रही नहीं, सिर्फ अल्लाह के नाम की। हाँ सवाब की नियत आप किसी की भी कर सकते हो, मगर अल्लाह के साथ आप गड़बड़ नहीं कर सकते, ये इंसानों वाला मामला नहीं है कि क्या कुछ दिया अंदर कुछ दिल में कुछ और। अल्लाह को तो पता है कि फलां बाबे का आपको दूर दूर तक उनका तो कुछ पता नहीं है सिवाय उनके नाम के, उनको आप कुछ नहीं जानते, इन्होंने क्या खिदमात अंजाम दी, वो क्या करते थे, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनकी नेकियां कैसी थी, कुछ नहीं जानते। बस ये जानते हैं कि यहाँ पे किसी ने बताया था, जो यहाँ पे अगर नजर मानता है उसके काम हो जाता, सिर्फ ये जानते हैं। तो इसलिए वहां जाके ही आपने देख देनी है, वहां जाके ही आपने बकरे जिबे करने हैं, वहीं पे आपने कोई नियाज देनी है। क्या ये बातें, क्या वहीं पे जाके कुछ सवाब ज्यादा मिलता है, ये किसने कहा? और क्या उनको सवाब पहुंचाने के लिए आपको इतनी वाकई उनसे मोहब्बत है कि उनको आप सवाब पहुंचाना चाहते हैं? और तो किसी को नहीं पहुंचाना चाहते, सहाबा भी हैं, ताबईन भी हैं, बुखारी और मुस्लिम है जिनकी आप किताबें पढ़ के इतना फायदा उठाते हैं, उनको तो कभी नहीं आपने सवाब पहुंचाया। वही बाबा जी जिनका वो मजार है, जहां पे लोगों का ये अकीदा है कि यहां से मुरादें पूरी होती, वहीं पे आपको जाके याद आता है कि हमने इनको सवाब पहुंचाना है। पूरी पूरी दुनिया के लोग खत्म हो गए, और भी तो बहुत हैं लोग जो फौत हुए। तो असल बात ये है कि पीछे अकीदा खराब है, ये मानते नहीं है हम। यहां पे हम गड़बड़ करते हैं ना, और हम लोगों कहते नहीं जी हमने तो सवाब पहुंचाना। इमाम जाफर के नाम की क्यों नियाज दी जाती है? ऐसा नहीं है, उनको तो जानते भी नहीं होंगे, उनसे पूछ लें उन लोगों से, वो कब पैदा हुए, कब वो फौत हुए, उनके क्या काम थे, उनकी क्या खिदमात थी, कुछ नहीं पता। मगर कुंडे उनके नाम के करने बस, क्योंकि अपने काम जो निकाल लें, हम इतने सेल्फिश है ना, हम सिर्फ अपने काम निकालना ये मतलब होता है, सवाब पहुंचाने की हमें कोई शौक नहीं होता। वो अब वो जैसे लाहौर में मिजार है हजरत अली हजवेरी का, उनको कहते हैं दाता साहब, दाता दाता देने वाला, दाता साहब ही जाके उनको याद आती है कोई चीज करनी, या दाता साहब को उन्होंने सवाब पहुंचाना। आगे पूछ लो उनको तो यकीन जाने आधे से ज्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इनका असल नाम क्या है। तो ये है औरों के नामों के ऊपर देना, अल्लाह का हक है जिसने दिया है ना, मां रजक ना कुम, रिस्क हमने दिया, नाम पे किसी और के देते हो। ये किसने तुम्हें राइट दे दिया? ये जानवर अल्लाह ने पैदा किए, ये सिर्फ उसके नाम पे कुर्बान हो सकती? अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दे दी कि इनको खा लो, वरना तुम इनको खाते तो तुम्हारे पर गुनाह होता। एक जानवर की तुम जान ले रहे हो, उसको खा रहे हो, गुनाह होना था ना तुम्हारे ऊपर, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दे दी, अल्लाह ने इसको तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, अल्लाह ने जायज कर दिया। अब तुम अल्लाह ताला का ही दिया हुआ वो माल है, अल्लाह ही की मिल्कियत है वो जानवर, उसको अल्लाह के नाम पे नहीं करते हो, किसी और के नाम पे देते हो। उसका क्या हक है कि उसके नाम पे दिया जाए, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा क्यों ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे भी नहीं हम कोई चीज कुर्बान कर सकते। हाँ, सवाब पहुंचाने को आप किसी को भी सवाब पहुंचाए, मगर अल्लाह ताला के साथ ये धोखा दही ना करो, झूठ ना बोलो, नियतों को देखो, सवाब ही पहुंचाना चाहते हो या अपने काम कराना चाहते हो? फमनित्तुरा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। तो जो कोई मजबूर किया गया, यानी अब यहां पे बताया गया कि अगर किसी इंसान के ऊपर ऐसी हालत आ गई है कि उसके सामने मसलन खिंजीर है, बस यही है, इसका गोश्त है, या शराब ही है, और सिर्फ अगर ये नहीं पीता तो फिर वो मर जाएगा, या अल्लाह ताला माफ करे, आज ऐसी जगह पे भी मुसलमान हैं कि जिनको मजबूर किया जाता है कि तुम खिंजीर खाओ, उनको खाने पे मजबूर किया जाता है वरना उनकी जान नहीं बचेगी, उनको खिलाया जा रहा है, उनको रोजे नहीं रखने दिए जा रहे, उनको शराब पिलाई जा रही, अब वो क्या करें? तो ये है इस तरारी हालत कि इतना मजबूर कर दिया जाए, गहरा बागें, वो खुद रगबत वाला ना हो, उसकी खुद चाहत ना हो कि मैं खा के देखता हूं ना, और मुझे कोई परवाह नहीं अल्लाह के हुक्मों की, ऐसा ना हो, वो बागी ना हो, या उसको चाहत ना रखता हो कि चलो अच्छा मौका मिल जाए तो मैं खा ही लूं, वाला आदिन, और ना हद से बढ़ने वाला, यानी अब दो चार लुक में खा के जान छूट सकती थी, उसने कहा चलो अब तो मौका मिल ही गया है, इस तरह मुझे इजाजत मिली भी है तो अब मैं अच्छी तरह खाता हूँ पेट भर के, नहीं, फिर भी सिर्फ उतने लुक में खाए जिससे जान बच जाए। अब कोई ऐसी जगह फंस गया है जैसे एक मुर्दार आ जाए, हराम कोई चीज आ जाए, वो फिर उस वक्त अल्लाह की तरफ से इजाजत है ان اللہ غفور رحیم، پھر اللہ معاف کرنے والا، کیونکہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا نا، اس کو کوئی شوق نہیں تھا، غیر باغن، اور نہ ہی وہ کوئی حد سے بڑھنے والا تھا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا. اب آگئی بات، پہلے کھانے میں حرام کی تھی، اب یہ کام حرام، ایک جو جس سے انسان، ایسا حرام کام جس سے انسان اپنے پیٹ میں حرام ڈال رہا ہے لیکن وہ دیکھنے میں حرام نہیں لگتا. وہ کون سا کام ہے؟ جو انسان چھپاتا ہے وہ جو اللہ نے نازل کیا اپنی کتاب میں. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں، ان میں یہود کے علماء تو ہیں ہی، کیونکہ وہ انہوں نے چھپایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں ان کو چھپا لیا تھا. لیکن ان کے علاوہ جو انسان اللہ تعالی کی بات کو چھپا جائے جبکہ اس کے پاس علم ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی نا، مجھے مسجد والے نکال دیں گے اگر میں نے یہ باتیں کی یہاں پہ، یہاں کی مینجمنٹ پھر مجھے پسند نہیں کرے گی. وہ کہتا پھر یہ سارے میرے جو اتنے فین بنے ہوئے ہیں، مرید بنے ہوئے ہیں، جو میرے اتنے اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں، یہ بھاگ جائیں گے، ان کو نہیں اچھا لگے گا، تو میں نہ چھپا لوں، میں بات نہ بتاؤں، اور اس ٹاپک کو کبھی لے کے ہی نہیں آتا. ایک ہوتا ہے چیز کو حکمتن کہ کوئی ٹائم ہوتا ہے اس وقت نہیں کہنی چاہیے، ایک ٹائم ہوتا ہے جب انسان دیکھے کہ ہاں اب یہ بات کہنے کا وقت ہے، اس وقت کہے. تو ایک مصلحت کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈیلے کر دینا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک چھپا جانا صرف کس لیے؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس لیے کہ وہ اس کے لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت. یہ تھوڑی سی قیمت ہے نا، کہ اگر یہ لوگ میرے سے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ تو سارے کلاسیں چھوڑ دیں گے، یہ تو میرے فین نہیں رہیں گے، ان کو یہ باتیں بری لگیں گی، ان یہ میرے مرید نہیں رہیں گے، مجھے کوئی کمائی نہیں ہوگی، ان یہ مجھے کوئی گفٹ نہیں دیں گے. تحفے تحائف دیتے تھے نا علماء کو، بڑے بڑے تحفے تحائف دیے جاتے تھے، ان کی بڑی وہ بڑی پوزیشنز تھیں جن کے اوپر وہ تھے، اور ان کو بڑا کچھ سمجھا جاتا تھا. تو میری کیا ویلیو رہے گی اگر میں نے اس ٹاپک کے اوپر ان کو کہہ دیا کہ یہ تو حرام ہے، تو یہ تو پھر سارے میرے سے بھاگ جائیں گے، ان کو تو یہ باتیں نہیں اچھی لگیں گی. تو اس زمانے میں یہود نے یہ کام کیا تھا کہ وہ دین کی بات کو چھپا گئے تھے، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا، پھر بھی انہوں نے چھپایا. اور دوسرے کیا تھا کہ فتوے دیتے تھے اس طرح کے، جیسے ایک عورت ہے اگر اس نے چوری کی ہے تو کہیں گے نہیں اس کا نہیں ہاتھ کاٹنا، کیونکہ وہ امیر عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا کیس آیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سفارش آئی تھی اس کی بھی کہ یہ امیر عورت ہے، بڑی خاندانی عورت ہے، بہت بڑے خاندان سے ہے، تو اچھا تو نہیں لگے گا کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے اس چوری میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی نا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. یہ ہوتا ہے انصاف، اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف، سب کے لیے ہو. جو یہ نہیں کہ اس کو غریبوں کے لیے تو بڑا انصاف ہے کہ وہ ایک تربوز بھی اٹھا کے کھا لے تو وہ بھی اس کو بھی جیل کر دی جائے. ایک بچے کا اس طرح کا واقعہ آیا تھا کہ اس نے تربوز اٹھا لیا تھا ایک دکان سے، تو انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ حد سے زیادہ، اور امیر لوگ تو چاہے اربوں خربوں کھا لیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو اس کے پیچھے چھوٹی قیمت لے لیتی، یہ تھوڑی قیمت ہے، اللہ کی آیات کو بیچ کے اس کے بدلے یہ قیمت لے رہے ہو، کہ تم چھپاتے ہو. اس لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی جو علم ہے ہم بتا دیں، لوگوں تک پہنچا دیں، کبھی چھپائیں نہیں اس کو، کبھی اس کو نہیں رکھیں گے آئے یہ پھر کیا کہیں گے اسلام کے بارے میں. ہاں حکمت کے ساتھ آپ نے ہر بات کرنی ہے، آپ کو یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ کس طرح بات کو پریزنٹ کرنا ہے، اس طرح بھونڈے طریقے سے نہیں پریزنٹ کریں گے دوسرا کراہت ہی کرنے لگے یا کوئی بات ہی آپ کو ایسی کہہ دے، بلکہ صحیح طریقے سے لاجک کے ساتھ بات کر کے کریں، اس کی مصلحتیں بتائیں. تو یہ ہے کہ اس کو بتانا ضروری ہے، چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے. کتنا بڑا جرم ہے، اس کی سزا آپ آگے دیکھیں. اولائک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ بھی حرام کھاتے تھے اور یہ بھی حرام ہے. یہ اتنا بڑا حرام ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ، سوائے آگ کے کچھ نہیں بھر رہے. لیکن دنیا میں نا، دنیا میں فزیکل لاز ہیں صرف، لیکن یہاں پر اگر آپ آگ کا ہنگارہ منہ پہ رکھیں گے تو آپ کا منہ جل جائے گا، لیکن اگر آپ حرام کا لقمہ کھاتے بھی رہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ پیٹ میں درد ہوگی، نہ آپ کو کوئی بیماری لگے گی، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے کھاتے رہیں حرام، کیونکہ یہاں پہ فزیکل لاز ہیں، آخرت میں مورل لاز ہیں. ये जो यहां पे खाए हुए हैं ना हराम के लुक में, ये वहां जाके फिर क्या बन जाएंगे, आग के गाय। वो असल में आग थी लेकिन वो दुनिया में नहीं जला रहे, ये आग है। वो अपने पेटों में क्या भर रहे हैं इस वक्त, क्या भर रहे हैं, आग भर रहे हैं। आग यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रही, ये वहां जाके आग बन जाएंगे। जैसा अमल होगा ना आप देखेंगे वैसी ही उसकी सजा भी। ये खाते थे ना, थोड़ी कीमत में बेच के ये खा रहे थे, थोड़ी कीमतें ले रहे थे ना, तो ये कर रहे थे। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल कियामत कियामती, और अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा इनके साथ कयामत के दिन। या ये क्या मतलब है, यानी अल्लाह की इतनी इनके साथ नाराजगी होगी कि अल्लाह इनसे बात भी करना नहीं चाहेगा, वला युज़क्कीम, और ना इनको पाक करेगा। क्योंकि जिसको अल्लाह उस दिन पाक कर दे, गुनाहों से पाक साफ कर दे, वही जन्नत में दाखिल हो सकता है। जो पाक ही नहीं होगा वो कैसे दाखिल होगा। इसके अलावा भी कोई जुर्म है वाकई जिसमें कि अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि ये अपने पेट के अंदर आग भर रहे हैं। हाँ, सूरह निसा में है, जो यतीम का माल खाता है वो भी अपने पेट में आग भरता है। और हदीस में तीन किस्म के लोगों से अल्लाह बात नहीं करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, ना उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो हदीस में है, एक यहाँ पे है ना, ये तो हदीस में भी है। एक जानी बूढ़ा, यानी बूढ़ा भी हो गया था, फिर उसके अंदर वो अब चाहत नहीं रह गई इस चीज की, लेकिन फिर भी उसने जिना किया। एक झूठा बादशाह, यानी वो एक बड़ी पोजीशन पे है, वो एक बादशाह है, उसके पास पावर है, वो पावर इतनी है, वो सच बोले तो उसको थोड़ी कोई कुछ पूछेगा क्योंकि वो बादशाह है, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलता है। और एक मुतकब्बिर फकीर, तो कोई किसी के पास कोई चीज हो तब भी उसको तकब्बुर नहीं करना चाहिए, लेकिन तू तो फकीर है फिर भी तू तकब्बुर कर रहा है। ये तीन है, इनसे तो अल्लाह बात नहीं करेगा। और फिर एक और भी हदीस में आता है जिनकी तरफ अल्लाह नजरे रहमत भी नहीं करेगा, जो जो नेकी करके किसी के साथ एहसान जताता है, जो झूठी कसम करके सौदा बेचता है, और जो अपनी ये जो अजार है, जो अपना कपड़ा है मर्दों के लिए ना, इसको लटकाता है, लटकने नंगे नहीं करता। तो ये हदीस में भी है। यहाँ पे कुरान पाक में ये इन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया इसको छुपाते हैं। वलहुम आदाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उलाइकल्लदीन अश्तरउ दलालत बिल हुदा, यही लोग हैं जिन्होंने खरीद ली गुमराही। गुमराही क्या है? इल्म को छुपाना। बिल हुदा, हिदायत के बदले। हिदायत क्या थी? इल्म का बताना हिदायत थी। इन्होंने इल्म को छुपाने को प्रेफर किया। इस तरह का मतलब क्या है यहाँ पे, खरीद ली, मतलब ये नहीं कि पैसों से जाकर खरीदी, मतलब ये कि प्रेफर क्या किया इन्होंने, इन्होंने तरजीह किसको दी, इन्होंने दलालत गुमराही को तरजीह दी हिदायत पे। इसलिए कि देखें, जब इंसान छुपाता है तो पता है इसका कितना नुकसान होता है। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये कि लोग जाहिल रहते हैं, फिर लोगों को पता ही नहीं हलाल क्या हराम क्या है, क्या बात सही है क्या। एक बंदे को पता है, वो चुप करके बैठा था, नहीं बता रहा। मैंने आपको जैसे पिछली दफा मिसाल दी थी कि अगर आपको पता है इस बीमार है और आपके पास दवा है, आप बीमारों को देख रहे हैं मर रहे हैं, ठीक है, आप आराम से बैठे हैं अपनी दवाई अपने पास लेके, कितने बड़े मुजरिम हुए ना फिर। तो जिनके पास इल्म है, हिदायत का इल्म है, फिर वो किसी को देते ही नहीं है, चुप करके अपने पास रखा हुआ है, चाहे शर्म की वजह से, चाहे लोगों की बातों की वजह से, चाहे लोगों की नाराजगियों की वजह से, या कितनी थोड़ी कीमत ली कि ये लोग मेरे से राजी रहे, बस मेरे से खुश रहे, मैं इसे नाराज ना हूं, मुझे इस तरह मेरी तारीफें करते रहे, मैं तो नहीं इनको कुछ कहूंगी। तो ये बहुत थोड़ी कीमत पे अल्लाह की आयत को बेच दिया। तो अगर उनको बताते तो हो सकता था कोई हिदायत पा लेता, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रेफर किया गुमराही को हिदायत के बदले। वल अजाब बिल मगफिरा, और इन्होंने अजाब लेने को कबूल किया बजाय इसके कि मगफिरत लेते। देखिए, दोनों चीजें मिल रही हैं, चाहे आप बताना चूज कर ले या छुपाना चूज कर ले। छुपाया तो अजाब है, बताते तो मगफिरत पाते। आपको पता है जो कि भलाई की बात लोगों को बताता है, आपको पहले भी यह हदीस बताई हुई है, तो उसके लिए समंदर की मछलियां तक दुआ करती हैं, दुआएं मगफिरत करती हैं, चींटियां अपने बिलों में करती हैं, सुभान अल्लाह। तो उसने मगफिरत को छोड़ के अजाब ले लिया अपने लिए। फमा असबरहुम अलन्नार, कितना इनका सबर है आग के ऊपर, यानी इनको पता है कि ये चीज हमें आग तक लेके जाएगी, फिर भी इनका कितना हौसला है ना, जिसको हम कहते नहीं, कितना हौसला है भाई तुम्हारा, यानी कितना सबर है तुम्हारा, यानी इनके ऊपर ताज्जुब किया गया कि क्या बात है तुम्हारी भाई, कि तुम्हें आग का पता है कि ये चीज आग में लेके जाती है, फिर भी कर रहे हो। ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. یہ ذالکا یہ کیا، یہ اتنی بڑی سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے تو نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، اس میں سارا کچھ حق ہے، اس میں ساری صحیح باتیں ہیں، تم نے اس کو چھپا لیا، اس کا مطلب تم حق کے بارے میں کنوینس نہیں ہو، تم خود کنوینس نہیں، جب انسان خود ہی کنوینس نہیں ہوگا تو بتائے گا بھی نہیں، اگر تمہیں واقعی پتہ یہ حق ہے نا تو تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، تھوڑی قیمت پہ بیچو گے نہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا اس میں، یا حجت بازی کی اس میں، بحثیں کی اس کتاب میں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيد، وہ بہت دور نکل گئے مخالفت میں یا بدبختی میں، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. اب اختلاف یعنی اسی میں بحثیں کرتے رہے، یہ ایک اور بات ہے، یہ ایک اور جرم ہے. ایک تھا نا کہ چھپانے کا، اور ایک یہ ہے کہ اس میں اختلاف کیا. تو اب وہ جب اس کے اختلاف کرتے ہیں تو اس کے بعد اس میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں، اب کہتے ہیں پھر ہم مانیں کیسے، اب اگر مان گئے تو لوگ کہیں گے اچھا پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے اب تم مان گئے، تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی بات آپ کو یہ جو حلال حرام کی چیزوں کی ہے، تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حدیث میں آتا ہے جن چیزوں کو حدیث میں بھی حرام کیا گیا، وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جن میں کچھلیوں سے شکار کرنے والے جانور جو ہیں، یعنی جو ان کو بھی روکا گیا، یعنی جو شکار کرنے والے درندے کہہ سکتے ہیں، جیسے شیر وغیرہ ہے، چیتا ہے، کتا ہے، تو ان سے بھی روکا گیا کیونکہ ان میں بھی درندگی ہے نا، تو وہ جانور بھی منع ہے. اسی طرح جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ پرندے بھی منع ہے، جیسے یہ عقاب ہے، چیل ہے، کوا ہے، یہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں نا، آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا کبھی پنجوں سے، یہ عقاب وغیرہ کو تو دیکھا ہوگا آپ نے، اڑا کے لے جاتا ہے چیز کو اور پھر پنجوں سے شکار کرتا ہے اس کا، تو وہ والے بھی جانور حرام ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنی.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وَيَشْكَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد